This is VOA News via remote. I'm Laurel Bowman. Nearly 280,000 people have died from COVID-19 globally, and there are more than 4 million confirmed infections. This, according to tallies by Johns Hopkins University. Both China and South Korea reported new spikes in coronavirus cases Sunday, setting off fresh concerns in countries where local outbreaks had been in dramatic decline. China reported 14 new cases on Sunday, its first double-digit rise in 10 days. 11 of 12 domestic infections were in the northeastern province of Jilin and one in Hubei, whose capital Wuhan was the epicenter of the global pandemic. The cases outside Wuhan prompted authorities to raise the threat level in the county Shulan to high risk just days after downgrading all regions in the country to low risk. Responding to the latest cases in Shulan, a top local official said, "Epidemic control and prevention is a serious and complicated matter, and local authorities should never be overly optimistic, war-weary, or off guard." British Prime Minister Boris Johnson is expected to extend the bulk of the country's coronavirus lockdown restrictions for 3 weeks or so when he speaks to the nation Sunday evening. Following a week of mixed messages that started with Johnson indicating that there will be changes to the lockdown starting Monday, the government has sought to douse speculation that that will amount to much. That's because the UK, which has recorded the most coronavirus-related deaths in Europe at over 31,000, is still seeing a relatively high number of infections. Extreme caution is actually the watchword on this, Transport Secretary Grant Shapps said Saturday. In the United States, more than 78,000 people have died, and the number of confirmed infections exceeds 1.3 million. This, according to tallies by Johns Hopkins University. Three members of the U.S. White House Coronavirus Task Force, including Dr. Anthony Fauci, placed themselves in quarantine after contact with someone who tested positive for COVID-19. Another stark reminder that not even one of the nation's most secure buildings is immune from the virus. Fauci, the director of the National Institute of Allergy and Infectious Diseases and a leading member of the task force, has become nationally known for his simple and direct explanations to the public about the coronavirus and COVID-19, the disease it causes. Also quarantining are Dr. Robert Redfield, director of the Centers for Disease Control and Prevention, and the commissioner of the Food and Drug Administration, Stephen Hahn. Fauci's institute said that he had tested negative for COVID-19 and will continue to be tested regularly. It added that he is considered at relatively low risk because of the degree of his exposure and that he would be taking appropriate precautions to mitigate the risk to personal contacts while still carrying out his duties. While he will stay at home and telework, Fauci will go to the White House if called and take every precaution, the institute said. Newly appointed Iraqi Prime Minister Mustafa al-Kadhimi called for the release of all protest detainees this weekend, except individuals whose hands have been stained with Iraqi blood. Iraq had been facing a mass protest movement since October of last year, which brought down former Prime Minister Adel Abdul Mahdi 2 months later. His cabinet had stayed on in a caretaker capacity until lawmakers approved a new government on Wednesday. Security forces and powerful militia groups killed hundreds of mostly unarmed demonstrators, while scores were arrested over the last 6 months before the global coronavirus pandemic placed most Iraqi cities on lockdown. In his televised address, the new prime minister also called for a committee to reevaluate relations between Iraq and the United States in an effort to protect Iraq's sovereignty. And Little Richard, one of the chief architects of rock and roll, has died after battling bone cancer. He was 87. Little Richard was famous for his piercing wail, pounding piano, and towering pompadour. He forever changed popular music while introducing black R&B to white America. For more on these stories and others from across the globe, please visit our website at voanews.com. This is VOA News via remote. I'm Laurel Bowman.
ये वॉइस ऑफ अमेरिका है। कोरोना की आलमी वबा के दिनों में वाशिंगटन से खुसूसी प्रोग्राम के साथ मैं हूँ असद हसन। आज के प्रोग्राम में बात होगी कोरोना के सबब पाकिस्तान के बरामदात में कमी, यूरोप में कसाद बाजारी, ईरान में मुआशी मुश्किलात। तजिया लेंगे मिडल ईस्ट इंस्टीट्यूट से वाबस्ता डॉक्टर ज़ुबैर इकबाल से। ये हर्ड इम्यूनिटी क्या है, स्वीडन और दुनिया के दीगर ममालिक कोरोना के खिलाफ इसको हथियार क्यों समझते हैं, ईरान के 15 सूबों में कोरोना की दूसरी लहर, बात करेंगे डॉक्टर सुहेल चीमा से। क्रिकेट मैदानों पर ना सही लेकिन वेबसाइट्स और सोचों में ज़रूर मौजूद है। कोरोना के सबब गेंद और बल्ले से दूर खिलाड़ियों के स्किल्स पर क्या फ़र्क पड़ेगा और क्रिकेट के मैदानों में वीरानी क्रिकेट बोर्ड्स के लिए कितने बड़े माली नुकसान का सबब बन रही है। गुफ्तगू करेंगे मारूफ क्रिकेट कमेंटेटर्स हसन जलील और शाह फैसल से। आखिरी सेगमेंट वबा में कला, न्यूयॉर्क में जिंदगी की रौनकें यकदम मांद पड़ते देखकर शायर अवैस राजा क्या लिखते हैं। तो चलते हैं प्रोग्राम के पहले हिस्से की जानिब और बात करते हैं पाकिस्तान की बरामदात में कमी और यूरोप में कसाद बाजारी पर।
वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन आपसे मुखातिब है मीडियम वेव 972 किलोहर्ट्ज़ पर।
ये वॉइस ऑफ अमेरिका है, मैं हूँ असद हसन और कोरोना की आलमी वबा के दिनों में हमारा ये खसूसी प्रोग्राम, बात हम करेंगे कोरोना के मुआशी असरात के ऊपर और दो डेवलपमेंट्स हैं जिसके ऊपर हम एनालिसिस लेंगे। डॉक्टर ज़ुबैर इकबाल साहब हमारे साथ मौजूद हैं, मुमताज़ तजियाकार मिडल ईस्ट इंस्टीट्यूट के साथ वस्तगी वाशिंगटन बेस्ड हैं और ना सिर्फ अमरीका बल्कि पूरी दुनिया की मीशत और बिलखसूस पाकिस्तान अमरीका की मीशत जो दो खासतौर पर उनकी नज़र रहती है। डॉक्टर साहब दो डेवलपमेंट्स हैं, एक तो ये कि कोरोना के सबब बताया ये जा रहा है कि अप्रैल में पाकिस्तान की जो बरामदात हैं उसमें 54% उसमें कमी आई है, अहदाफ का जो हसूल है वो मुश्किल होता जा रहा है, बड़ी ये कमी है और इक्तसादी माहिरीन वहाँ पर बता ये रहे हैं कि अगर आइंदा चंद महीनों के दौरान पाकिस्तानी बरामदात में ये मनफी रुझान जारी रहता है तो इस साल के लिए जो अहदाफ मुकर्रर किए गए थे 26 अरब डॉलर के वो नामुमकिन हो जाएंगे या इंतहाई मुश्किल हो जाएंगे, ये थोड़ा सा अंडरस्टूड भी है इस एतबार से। दूसरी खबर जो है वो है उससे यूरोप से हमारे सामने आ रही है और यूरोपीय यूनियन ने बताया है कि 27 मुल्कों के इस ग्रुप में ग्रुप को इस साल कोरोना की सबब सख्त नौयत की कसाद बाजारी का सामना है और ये रिपोर्ट में बताया ये गया है कि ब्रसल्स में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस की वाइन ली ने और उनका बताना ये था कि यूरोप की मईशत से मुतालिक की तवक्को ये की जा रही है कि 2021 में 6% बहाली से पहले 2020 में यूरोपीय मईशत 7.5% जो है वो मजीद सुकड़ जाएगी। सो इसके साथ बाजारी पे और पाकिस्तान के अंदर जो है वो डिक्लाइन बरामदात का इस पे बताइएगा कि ये किस वजह से जाहिर है कि जो कि फैक्ट्रीज बंद हैं, प्रोडक्शन नहीं है, सो नेचुरली वो नहीं हो रहा है या इंटरनेशनल कम्युनिटी ने ऑफकोर्स इम्पोर्ट्स उसके ऊपर भी कदगने लगा दी होंगी कि पता नहीं क्या मटेरियल कहाँ से क्या चीज़ें आ रही हैं।
देखिए पहला सवाल तो जो है ना पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स के मुताबिक वो तो एक्सपेक्टेड था, याद रहे कि अप्रैल वो पहला महीना था जब पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स में खास कमी आई, उससे पहले इतनी सिग्निफिकेंट कमी नहीं आई थी। इनफैक्ट जो मार्च का महीना था उसकी जो एक्सपोर्ट्स थी वो मार्च 2019 के एक्सपोर्ट के मुकाबले में थोड़ी सी कम हुई थी लेकिन ज्यादा कम नहीं हुई थी। उस वक्त तक ग्लोबल इकोनॉमी जो है उसके हालात खराब हो चुके थे और उसके साथ साथ कंजम्पशन और डिमांड बाकी मुल्कों में गिर गई थी, जिसकी वजह से नेचुरल सी बात है कि पाकिस्तान की एक्सपोर्ट में बुरा असर आएगा जैसे कि बाकी लोगों की बाकी मुल्कों की एक्सपोर्ट में भी आया है। इस वक्त तो तमाम दुनिया के जो ममालिक है उनकी एक्सपोर्ट गिरी है क्योंकि तमाम के तमाम दुनिया की जो कंजम्पशन है वो गिर गई है, जिसकी गिरी है तो उसके साथ साथ इम्पोर्ट भी गिरी है और उसकी वजह से तमाम मुल्कों की एक्सपोर्ट गिरी है, वो तो नॉर्मल सी बात है। अब असल बात ये फरमा रहे थे वो दोस्त है कि अगर इसी स्पीड पर गिरती रही जैसे कि अप्रैल में हुआ है तो फिर ये एक बड़ा सीरियस मामला बन जाएगा। जैसे हम देख सकते हैं कि ये जो असरात होते हैं टिपिकली इस किस्म के वो थोड़े से स्टैगर्ड होते हैं, उसमें कहने का मतलब ये है कि जो एडवर्स इफेक्ट होता है वो वक्त के साथ आता है। अब ये लग रहा है कि पाकिस्तान का अगला जो तीन महीने हैं जो आखिरी तीन महीने हैं इस फिस्कल ईयर के उससे मुश्किल होंगी और एक्सपोर्ट्स और गिरेंगी, लेकिन ये भी देखना बहुत जरूरी है कि उसके साथ साथ पाकिस्तान की इम्पोर्ट्स हैं वो भी बहुत सिग्निफिकेंटली गिर रही है। इसलिए सरप्राइज سرپرائزنگلی آپ یہ سنیں گے تو حیران رہ جائیں گے کہ پاکستان کی جو ٹریڈ بیلنس ہے وہ امپروو ہوا ہے, وہ امپروو ہوا ہے ابھی تک تو. لیکن کیا اس قسم کی امپروومنٹ قائم رہے گی یہ کہنا بہت مشکل ہے. لیکن نارملی ایسا ہی ہوتا ہے کہ جب اکانومی کنٹریکٹ کرتی ہے تو اس کے ساتھ ساتھ امپورٹ زیادہ گرتی ہیں اور ایکسپورٹ ذرا کم گرتی ہیں, اس کی وجہ سے ٹریڈ بیلنس جو ہوتا ہے وہ امپروو ہو جاتا ہے تھوڑی دیر کے لیے ٹیمپرریلی. یہی پاکستان میں ہوا ہے, باقی ممالک میں بھی ایسا ہوا.
لیکن اس میں ایک اور بات بھی ہے نا, چونکہ پاکستان ایک ایگریکلچرل ملک ہے, سو اس کی جو ایگریکلچرل پروڈکٹس ہیں جیسے چاول ہے یا دیگر کچھ اشیاء خوردنوش ہیں, اس کی برآمدات میں اضافہ ریکارڈ ہوا ہے. ٹیکسٹائل انڈسٹری جو ہے وہ متاثر ہوئی ہے, وہاں پہ ظاہری پروڈکشن بھی کم ہوئی ہے اور آف کورس جو ہے وہ ایکسپورٹ وہ بھی کم ہوئی ہے. سو یہ بھی تھوڑا یعنی کہنا چاہیے کہ انڈسٹری ٹو انڈسٹری ویری کریں گی چیزیں,
ہمیشہ کرتی ہیں. یہ آپ کا کہنا بالکل درست ہے کہ جو مینوفیکچرنگ پروڈکٹس ہوتی ہیں خاص طور پہ کاٹن جیسی چیزیں, اس میں نیٹ ویئر شامل ہو جاتا ہے, گارمنٹ شامل ہو جاتے ہیں, تھریڈ وغیرہ شامل ہو جاتا ہے, کلاتھ شامل ہو جاتا ہے, تو ان میں یقیناً کمی آئے گی کیونکہ دنیا میں ڈیمانڈ جو ہے وہ کم ہو گئی. وہ تو ٹھیک ہے, لیکن آپ کا کہنا یہ بھی درست ہے کہ چونکہ دنیا میں جہاں تک کھانے کی ضرورت ہے اور کھانے کی ڈیمانڈ کا معاملہ ہے وہ اتنی جلدی کم نہیں ہوتا, تو اس پہ ایکسپیکٹیشن یہی ہونی چاہیے کہ پاکستان کی جو چاول اور گندم اور دوسری چیزوں کی جو ایکسپورٹ ہے وہ اتنی نہیں گرے گی جتنے کہ مینوفیکچر پروڈکٹس میں گرہی ہے. یہ بھی درست ہے, لیکن یہ اتنی اس کو اتنی زیادہ ایکسپیکٹیشن نہ لگائیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ تمام ملکوں نے یہ ایک ٹریڈیشنل بن گئی تھی, خاص طور پہ گلف کے علاقے میں جہاں ہماری ایگریکلچر ایکسپوزر زیادہ جاتی ہیں, کہ وہاں پر انہوں نے اپنے اسٹاکس بنانے شروع کر دیے. اور وہ اس وقت جبکہ کنڈیشن خراب ہو گئی ہے اور تمام دنیا کی قیمتیں وہ گر گئی ہیں, تو ہو سکتا ہے کہ وہ اپنا اسٹاک بھی استعمال کریں اور ری اسٹاکنگ بھی کریں. اگر وہ ری اسٹاکنگ کرتے ہیں تو پھر ان کو زیادہ امپورٹ کرنے کی ضرورت پڑتی ہے. لیکن کہاں تک ہوگا اور کیسے ہوگا یہ بھی کہنا بہت مشکل ہے, کیونکہ اس معاملے کو ابھی صرف دو مہینے ہوئے ہیں, تو اس کے دو مہینوں کا جو پیریڈ ہوتا ہے اتنا کم ہوتا ہے کہ آپ کوئی فرم اسسمنٹ نہیں کر سکتے. لیکن یہ ضرور ہے جیسے آپ نے فرمایا کہ ایگریکلچر ایکسپورٹس کم گرے گی, مینوفیکچرنگ ایکسپورٹ زیادہ گرے گی, خاص طور پہ کاٹن کی ایکسپورٹ زیادہ گرے گی. کیا ہوگا یہ ایک دو مہینے آپ کو انتظار کرنا پڑے گا, اس کے بعد ہی محسوس ہوگا کہ کیا ہو سکتا ہے. لیکن یہ میں کہتا چلوں کہ یہ جو کہتے ہیں اس کوائن کے دو حصے, دو سائڈ ہیں, ایک سائڈ پہ تو امپورٹ گر رہی ہیں, ایکسپورٹ گر رہی ہیں, لیکن امپورٹ بھی گر رہی ہیں اور خاص طور پہ بڑی تیزی سے گر رہی ہیں, جس کی وجہ سے ٹیمپرریلی آپ کا ٹریڈ بیلنس بہتر ہو جائے لیکن وہ پرماننٹلی نہیں ہوگا.
ٹھیک, اب ڈاکٹر صاحب آتے ہیں یورپ کی کساد بازاری کی جانب. ہمیں ہمارے لوگوں کو یہ بھی بتا دیں کہ کساد بازاری کیا ہے, اور 27 ممالک جو ہیں وہ اس ریفرنس میں, وہاں پہ پوری یونین وہ اسٹرگل کر رہی ہے اور کرونا نے بری طرح سے اس کو متاثر کیا ہے, اور یہ جو معاشی چیلنجز یا بدحالی کی جو پیش گوئیاں ہیں یہ کہاں لیڈ کریں گی پوری یورپ کی اکانومی کو؟
دیکھیے جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ اس سال جہاں تک ہمیں معلوم ہے یورپین یونین کی جو پروڈکشن ہے یعنی کہ ان کی جو نیشنل انکم ہے وہ کوئی 7.5% گرے. یاد رہے کہ اس کی امپلیکیشن ہر طرف کی ہوں گی, یہ بھی دیکھنا ضروری ہے کہ امریکہ یورپ اور چین اور جاپان کو ملا کر یہ ممالک جو ہیں یہ دنیا کی 75 سے 80% جو گلوبل پروڈکشن ہے وہ کرتے ہیں. اگر ان میں گرتی اگر یہ گرتے ہیں تو اس کی وجہ سے ان کے اثرات دوسرے ممالک پر بہت زیادہ ہوں گے اور جو آپ سامنے نظر آنے شروع ہو گئے. جہاں تک یورپ کا تعلق ہے یاد رہے کہ یورپ نے ان کو امپورٹ کی بہت ضرورت رہی تھی, اس کے ساتھ ساتھ وہی اکانومی جو ہے ایکسپورٹ ڈیپینڈنٹ ہے, ان کے اثرات زیادہ ہوتے ہیں. اب مشکل یہ آ جاتی ہے کہ آیا یہ ریورس ہوگا کہ نہیں ہوگا اور کتنی جلدی ہوگا. جہاں تک مجھے معلوم ہے کہ وہ یورپین یونین ہمارے لیے کہہ رہے ہیں کہ وہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ 2021 میں ان کی پروڈکشن کچھ 6% بڑھ جائے گی بہ نسبت 2020 کی. نا یہ پروڈکشن جو ہے یہ بڑی خطرناک قسم کی پروڈکشن, کیونکہ اس کی جو بیسک فاؤنڈیشن ہوتی ہیں ان میں مشکلات ہوتی ہیں. ایک تو بات یہ ہے کہ اگر یہ 6% بڑھ بھی جائے اس کے باوجود یورپین یونین کی جو اپنی انکم ہوگی وہ 2019 کا مقابلے میں ابھی بھی نیگیٹو ہوگی.
صحیح صحیح,
لیکن جہاں تک میں دیکھ سکتا ہوں جہاں تک اس کی یورپ کی انٹیگریشن دوسرے ممالک کے ساتھ ہے اور ریجنل انٹر ریجنل انٹیگریشن ہے, اس کو دیکھتے ہوئے مجھے تو یہ محسوس ہوتا ہے کہ کیونکہ لیگ بہت زیادہ ہوتی ہے, یہ ایڈجسٹمنٹ جو ہوتی ہے اس میں وقت لگتا ہے. ابھی تو کنٹریکشن ہو رہی ہے, اس کے بعد اگر تھوڑی سی ایکسپینشن شروع ہوئی تو اس کے لیے کریڈٹ چاہیے ہوگا, اس کے لیے نیا کیپیٹل چاہیے ہوگا, لیبر کو دوبارہ واپس آنا ہوگا, ایڈمنسٹریٹو ڈیلیز ہوتے ہیں, بہت مشکلات پیدا ہوتی ہیں دوبارہ پروڈکشن کو اسٹارٹ کرنے میں. مجھے یہ لگتا ہے کہ 2021 میں ان کی پروڈکشن جو ہے یا ان کی انکم جو ہے وہ تو 3-3.5% زیادہ نہیں ہو.
یعنی ایک سٹرگل ہے جو میں پورا نہ صرف ملک بلکہ پورے براعظم اور پوری دنیا کرتی ہوئی نظر آتی ہے. ڈاکٹر زبیر اقبال صاحب, اب ذرا ایک ہیومنٹیرین اینگل ہے, ویسے تو اسٹریٹجک زاویہ بھی ہے کرونا کا. ایران دنیا سے آئسولیٹ ہے, بڑی پابندیاں ہیں اس کے اوپر امریکہ خاص طور پہ, لیکن یورپ کے ساتھ اس کی انٹیگریشن یا بزنس اسٹل ہیں. میں یہ جاننا چاہوں گا کہ ایران سے خبریں یہ آ رہی ہیں کہ وہاں پہ اس کے 15 صوبوں کے اندر کرونا وائرس جو ہے مزید شدت کے ساتھ واپس آیا ہے اور 15 اس کے صوبے وہاں لپیٹ میں ہیں. وہاں پہ ایکسپرٹس یہ بتا رہے ہیں کہ چونکہ لاک ڈاؤن ختم کرنے کے لیے جو ایک ڈیٹ رکھی گئی تھی اس سے کم از کم 3 ہفتے پہلے اس کو کھول لیا گیا, کیونکہ معاشی دباؤ ہیں, زیادہ دیر اس کو وہ لاک ڈاؤن نہیں رکھ سکے ہیں. سو اب وہاں پہ نئی وبا آ گئی, تو ان چیزوں کو دیکھتے ہوئے انٹرنیشنل کمیونٹی بالخصوص امریکہ, وہ کیا اپنی حکمت عملی پہ نظر ثانی کر سکتا ہے؟
نظر ثانی کرنا آسان کام نہیں ہے کیونکہ تمام ممالک اور اس میں امریکہ بھی شامل ہے, مشکلات بہت زیادہ ہیں. ان کی اپنی انٹرنل پرابلمز ایسی ہیں کہ وہ ایکسٹرنل ایشوز کے اوپر اتنا فوکس نہیں کر رہے جتنا کہ ان کو کرنا چاہیے یا وہ کریں گے آئندہ کچھ 6-5 مہینوں کے بعد. جہاں تک ایران کا تعلق ہے, ہم سب, آپ کو بھی معلوم ہے, ہم سب کو معلوم ہے کہ وہاں کی جو پرابلم ہوئی وہ اس لیے ہوئی ہے کہ ان کو بیسک قسم کی جو دوائیوں کی ضرورت تھی یا دوسری جو انسٹرومنٹس ہوتے ہیں سرجیکل اور دوسرے انسٹرومنٹ اور پروٹیکشن کے لیے جو پی پی ای کی جو ان کو ضرورت ہوتی ہے وہ ان کو نہیں مل رہا. اس کے ساتھ ساتھ ملک کے اندر جو سوشل ڈسٹینسنگ کی انفارمنس بہت کم تھی, بڑی لمیٹڈ تھی, تو یہ تو ایکسپیکٹڈ تھا کہ ایسا ہوگا. تو کوشچن صرف یہ تھا کہ کتنی جلدی ہوگا اور کتنا سیریس ہوگا. اگر 25-20 پروونسز میں یا جو ان کے ضلع ہیں ان کے اندر اگر وہ ان کو کنٹین کر دیتے ہیں تو پھر مشکلات اتنی سیریس نہیں ملتی. جہاں تک انٹرنیشنل سپورٹ کا معاملہ ہے, دیکھیے تمام ممالک کو اس وقت بڑی چیلنجز, ایک تو چین ہے, تھوڑی سی لمیٹڈ اماؤنٹ میں جاپان ہے اور کچھ اور یورپ کا ممالک ہے, خاص طور پہ جرمنی جو نکلنے کے لیے تیار ہے لیکن اس میں ڈیلیز بہت آ رہے ہیں. تو اس لیے یہ امید رکھنا کہ گلوبل سوسائٹی جو ہے اس وقت ایران کی مدد کرنے کے لیے تیار ہو جائیں گے اور ان کے اوپر جو سینکشن لگے ہوئے ہیں ان کو ویکن کر دیں گے. یہ ایک
اچھا, اگر سینکشنز نہ بھی لفٹ ہوں یا نہ ایز ہوں تو یہ ہیومینیٹیرین گراؤنڈز کے اوپر امداد مل سکتی ہے ایران کو؟
اگر ہو تو ملے نا. دیکھیں جیسے عرض کر رہا تھا کہ بیسک پرابلم اویلیبلٹی کی ہے اور ڈومیسٹک نیڈ کی ہے. پہلے آپ ڈومیسٹک نیڈ کو پورا کرتے ہیں, اس کے بعد آپ آگے بڑھ دیکھتے ہیں. دیکھیں ہو یہ رہا ہے کہ ابھی یورپین یونین نے دوسرے ملکوں کو ملا کر ایک نیا کانٹریکٹ اگریمنٹ کیا تھا, اس کی بیسس پر وہ ریسورسز باقی ملکوں کو پرووائڈ کریں گے تاکہ وہاں پر اس کو کنٹرول کیا جا سکے, لیکن اس کو انفورس کرنے میں وقت لگتا ہے.
لیکن جیسے نا آئی ایم ایف نے, ورلڈ بینک نے, ایشین ڈیولپمنٹ بینک نے کچھ پیکیجز دیے پاکستان کو, پاکستان جیسے ملکوں کو, بعض ملکوں نے باقی ملکوں کے قرضے ریسکیجول کیے, سو اس ٹائپ کی کوئی کمپنسیشن؟
دیکھیے ایران مانگ رہا ہے آئی ایم ایف سے, وہ $5 million مانگ رہا ہے. اب پرابلم یہ آ جاتی ہے کہ یقیناً امریکہ جیسے ممالک جو ہے اس کو اپوز کرتے ہیں.
پانچ بلین
تو وہ اب یقیناً اس کے لیے ایران کو ایک 85% سپورٹ کی ضرورت ہے بورڈ میں. اب امریکہ اس کو ویٹو تو نہیں کر سکتا اور نہ وہ کرے گا ایس ایز آئی نو, لیکن وہ ووٹ نہیں کرے گا اس کے سپورٹ میں. مشکل یہ آ جاتی ہے کہ دوسرے ممالک اس کے لیے تیار ہیں کہ نہیں, نمبر ون. نمبر دو یہ ہوتا ہے کہ ہاں یہ بہت کنسیشنل قسم کی اسسٹنس ہوتا ہے, لیکن اس اسسٹنس کے لیے آپ کو ایک پالیسی پلان دینا ضروری ہوتی ہے جس کی بیسس پر آپ انفورس کریں گے. अभी तक ईरान ने इस किस्म की पॉलिसी प्लान सपोर्ट को ऑफर नहीं की। उसकी दो वजूहत, एक तो ये कि ईरान के अंदर अपना कॉन्फ्लिक्ट पाया जाता है और कुछ ऐसे ग्रुप्स हैं जिनमें के रेवोल्यूशनरी गार्ड शामिल हैं, वो नहीं चाहते कि ईरान इस किस्म की सपोर्ट हासिल करने के लिए नेशनल ऑर्गेनाइजेशन जैसे कि IMF के पास जाए। एक तो ये बात। दूसरी बात यह है कि इस किस्म की पॉलिसी प्लान को बनाना और फिर उसको शेयर करना उनके लिए मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वो ये नहीं बताना चाहते कि उनके स्टेप क्या है, कि उनकी प्रॉब्लम्स कितनी सीरियस है और वो किस तरीके से इसको हल करेंगे, क्योंकि उनको जो फिक्र रहता है कि ये इंफॉर्मेशन अगर गलत हाथों में चली गई तो उसके लिए वो नुकसानदेह हो सकती है।
जी बहुत शुक्रिया डॉक्टर ज़ुबैर इकबाल साहब, एक्सपर्ट विद मिडल ईस्ट इंस्टीट्यूट, आपने मैं ज्वाइन किया और पाकिस्तान की मईशत और यूरोप की मईशत और फिर ईरान के चैलेंजेस उस पर आपने बात की। थैंक यू सो मच।
ताज़ा तरीन खबरें, रेडियो प्रोग्राम्स, ऑडियो और वीडियो रिपोर्ट्स देखने, सुनने और पढ़ने के लिए अपने स्मार्टफोन पर डाउनलोड कीजिए VOA उर्दू की ऐप, जो गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर दस्तियाब है। खबरें अब हर वक्त आपकी मुट्ठी में।
ये वॉइस ऑफ अमेरिका है, मैं हूँ असद हसन। कोरोना की आलमी वबा के दिनों में हमारा ये खसूसी प्रोग्राम और इस सेगमेंट में हम बात करेंगे कोरोना से निपटने के लिए जारी कोशिशों पे। एक तरफ तो वैक्सीन बनाने के दावे हो रहे हैं, न्यूयॉर्क टाइम्स आज ये बता रहा है कि न्यूयॉर्क के अंदर एक पहले मरीज को बाकायदा ये वैक्सीन लगा दी जाएगी। वो कितनी साजगार रहती है, उसके क्या नतीजे आते हैं, ये हमें वक्त बताएगा। या हमारे साथ हमारे जो मौजूद गेस्ट हैं, बार बार हम उनको इन दिनों में जहमत दे रहे हैं, डॉक्टर सुहेल चीमा साहब, न्यूयॉर्क बेस्ड डॉक्टर हैं, प्रैक्टिशनर हैं, और उसके साथ साथ वो अपने सोशल मीडिया पेजेस के ऊपर, फेसबुक के ऊपर, इस पर जो रिसर्चेज आ रही होती हैं उनको ना सिर्फ एलोबरेट करते हैं बल्कि अपना उसमें एनालिसिस भी देते हैं। सो डॉक्टर साहब, एक बार फिर आपका खैर मकदम। वॉइस ऑफ अमेरिका के प्रोग्राम में हम आपको बहुत तवातुर से जहमत दे रहे हैं।
बहुत शुक्रिया सर
जी। डॉक्टर साहब, आपने अपने एक मैं कहूँगा ब्लॉग कहूँ, डिटेल्ड स्टेटस कहूँ, आपने उसमें एक हवाला दिया है कि स्वीडन के अंदर हर्ड इम्यूनिटी जो है उसके ऊपर वो काम हो रहा है और उसको वो अप्लाई करते हुए कोरोना से डील करने की एक अच्छी बेहतरीन हिकमत अमली के तौर पे आगे बढ़ रहे हैं। हमें और हमारे सामीन को बताइए कि ये हर्ड इम्यूनिटी क्या है और कोरोना में कैसे मददगार हो सकती है ज़िंदगी को वापस लाने के लिए।
देखें, हर्ड इम्यूनिटी जो है उसको आप इस तरह समझें कि अगर जैसे कोरोना वायरस के बारे में जो हर्ड इम्यूनिटी का नंबर है वो 70% लोगों को के अंदर अगर एंटीबॉडीज होंगी तो फिर ये वायरस जो है मजीद नहीं फैल सकेगा, मतलब उसके बाद ये वायरस की जो पेंडेमिक है वो खत्म हो जाएगी। इससे पहले जैसे मीजल्स था, वो मीजल्स की हर्ड इम्यूनिटी के लिए 90% लोगों को उसके अंदर एंटीबॉडीज होना जरूरी है तो मीजल्स नहीं फैलता उसके बाद। तो उसका जो इन्फेक्शन रेट था मीजल्स का कोरोना वायरस से भी ज्यादा है, लेकिन क्योंकि मीजल्स की वैक्सीन बन गई, हर बच्चे को MMR मीजल्स मम्स और रुबेला की वैक्सीन लगती है, तो इसकी वजह से उसका पेंडेमिक जो है वो नहीं बना और वो उसको हमने कंटेन कर दिया। उसको मैं आसान लफ्जों में इस तरह समझाता हूँ कि एक कमरे के अंदर अगर 100 लोग हैं तो 100 लोगों के अंदर अगर 70 पीपल वुड नीड टू हैव एंटीबॉडीज।
ठीक है,
अब वो एंटीबॉडीज किस तरह आएंगे? एंटीबॉडीज दो तरीके से आती हैं। एक तो एंटीबॉडीज जैसे कि हम वैक्सीन देते हैं किसी पेशेंट्स को, जैसे बचपन में हम सबको हर तरह की वैक्सीन हमें लगी है और जिसकी वजह से हमें वो सारी बीमारियों से, हमने जो पहले 100 साल पहले 50 साल पहले 200 साल पहले बीमारियां होती थी जैसे चिकन पॉक्स हो गई, स्मॉल पॉक्स हो गई, पोलियो की वैक्सीन दी जाती है, इस तरह कॉमन डिजीजेस होती हैं जिसकी वैक्सीन हमें तैयार की तो वो बीमारियां हमने दुनिया से खत्म कर दी ऑलमोस्ट। तो कोरोना वायरस के लिए हमें अगर एक कमरे में 100 लोग हैं, 100 में से 70 लोगों के अंदर एंटीबॉडीज अगर डेवलप कर दे तो उनको ये कोरोना वायरस का स्प्रेड खत्म हो जाएगा। अब वो एंटीबॉडीज दो तरीके से पैदा हो सकती है, एक ये कि लोगों को इन्फेक्शन ऑलरेडी जब हो जाता है कोरोना वायरस का तो आपका जिस्म उस वायरस के खिलाफ एंटीबॉडी तैयार कर देता है आपके,
सही,
यानी कि फ्यूचर में फिर आपको उस वायरस का इन्फेक्शन होने के चांसेस ऑलमोस्ट खत्म हो जाते हैं।
ठीक है,
एक तो ये तरीका है जो कि नेचुरल तरीका है। दूसरा तरीका ये है कि आपके पास वैक्सीन हो, जैसे कि कोरोना वायरस की वैक्सीन की बहुत बातें हो रही है, बहुत सारी कंपनीज यानी कि 35 कंपनीज हैव बीन वर्किंग ऑन इट टू डेवलप द वैक्सीन और चांसेस है कि नेक्स्ट ईयर अर्ली या मिड तक इसकी वैक्सीन मार्केट में आ जाएगी।
सही।
अब दूसरा तरीका जाहिर सी बात है, एक साल हमने गुजारना है। जैसे स्वीडन के आपने रेफरेंस दिया, जैसा कि मैंने कल अपनी ब्लॉग पे भी लिखा था, तो उन्होंने ये नया एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने कहा भाई देखिए, हम लोग लॉकडाउन जो है ना ज्यादा अरसे तक हम नहीं अफोर्ड कर सकते, हमें जो है नेचुरली जो हर्ड इम्यूनिटी है, यानी कि हम इसको लोगों को बाहर निकालते हैं और जो ससेप्टेबल यानी कि एल्डरली जो पॉपुलेशन है या इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज यानी कि वो लोग जिनकी कोई सिवियर किस्म की डिजीज बीमारियां हैं जो कि कोरोना वायरस उन लोगों को सिवियरली अफेक्ट करता है, उनको हम प्रोटेक्ट कर लेते हैं। यंगर पॉपुलेशन को बाहर निकालें और अगर उनको इन्फेक्शन हो भी जाता है तो वो दे आर सो हेल्थी इनफ दैट दे विल फाइट इट आउट। जाहिर सी बात है वहां पे डेथ्स भी हो रही है, ऐसा नहीं है कि एक आदमी भी नहीं मरा, वहां पे भी ओवर 1500 पीपल हैव बीन डाइड सो फार विद द कोरोना वायरस। बट देयर पर्सपेक्टिव और देयर नैरेटिव कि भाई देखें डेथ तो वैसे भी होंगी, अगर हम लोगों को जैसे अमेरिका में लॉकडाउन है, क्या डेथ नहीं हो रही? यहाँ पे देयर ओवर 70,000 पीपल हैव बीन डाइड विद द कोरोना वायरस इन यूएस एट दिस मोमेंट। लेकिन क्या है कि इकोनॉमी का जो बहुत बड़ा जो, मैं तो इसको इकोनॉमी का वायरस के नाम से ही कहता हूँ कि जो वो कोरोना वायरस से भी ज्यादा खतरनाक होगा फ्यूचर में भी और एट द मोमेंट भी, क्योंकि सो फार 30 मिलियन पीपल हैव लॉस्ट देयर जॉब्स एट द मोमेंट। आने वाले दिनों में मजीद ये नंबर बढ़ते ही चले जाएंगे।
बहुत सारी है, आपके हम पोस्ट में देखते हैं बहुत सारी इश्यूज पे के रेफरेंस में बताइए, वहां पे भी एक डॉक्टर साहब का ये है कि एंटीबॉडीज जो है उसकी अप्रूवल मिलनी चाहिए और उन्होंने वो मॉडल शो किए हैं वहाँ पे, लेकिन आपको लगता है कि पाकिस्तान में भी ये परमिशन दे दी जानी चाहिए? वहाँ पे तो वैसे भी मेजॉरिटी जो है उनकी उम्र 35 ईयर से 35 साल से कम है और एक नेचुरल कहा जाता है कि इम्यूनिटी उनकी है कोरोना के अगेंस्ट।
जो गरीब ममालिक हैं उनके लिए लॉकडाउन जो है वो ज्यादा खतरनाक है बजाय इसके कि आप उनको बाहर जाने दें। लेकिन बाहर जाने का मतलब ये नहीं है कि फ्लड गेट खोल दें, उसको तरीके के साथ। जैसे स्वीडन में ऐसा नहीं हुआ कि उन्होंने लॉकडाउन नहीं किया तो उन्होंने सोशल डिस्टेंसिंग या बाकी चीजों को वो फॉलो नहीं कर रहे। जैसे वहां पे रेस्टोरेंट कैपेसिटी स्वीडन के अंदर लेस देन 50% की हुई उन्होंने, कि नहीं कि आप रेस्टोरेंट में जाएं लेकिन वहां पे लोग कम होंगे, बाहर भी अगर आप जाएं तो मास्क पहने। तो मेरा भी यही मतलब नैरेटिव है, बल्कि मैं लोगों से यही कहता हूँ पाकिस्तान में खासतौर पे जो लोग हैं कि भाई आपने लॉकडाउन आपके लिए मुझे पता है बहुत मुश्किल है, खासतौर पे गरीब आदमी है उसको।
नहीं, लेकिन एंटीबॉडीज ये तो दुरुस्त हो गया लॉकडाउन और उसके लिए आज उन्होंने अप्रूवल दे भी दिया है कि उसको लॉकडाउन जो है वो ईज किया जाए। लेकिन एंटीबॉडीज टेस्ट वहाँ पे डॉक्टर साहब, मैं इस वक्त उनका नाम भूल रहा हूँ, वो बार बार गवर्नमेंट को वफाकी हुकूमत को वो ये तजवीज़ भेज रहे हैं कि हमें एंटीबॉडीज टेस्ट जो हैं वो करने दिए जाएं ताकि हम ये डायग्नोज कर लें कि कहाँ पे इम्यूनिटी ज़्यादा है और वहाँ से हम वो चीज़ें बाकी दो लोगों में मुंतकिल कर सकें।
देखिए एंटीबॉडी टेस्ट से आपको ये पता चलेगा कि कितनी परसेंट पॉपुलेशन को इन्फेक्शन हो चुका है और उनके अंदर इम्यूनिटी डेवलप हो चुकी है, ये उससे फायदा होगा। वो ये ट्रीटमेंट बहरहाल नहीं होता, उससे आपको एक आइडिया हो जाता है और उससे बहरहाल ये कि एक रेफरेंस पॉइंट मिल जाएगा कि पाकिस्तान के अंदर मिसाल के तौर पे अगर जैसे न्यूयॉर्क सिटी के अंदर इन्होंने किया था 21% पीपल हैव बीन पॉजिटिव फॉर द एंटीबॉडीज व्हिच इज अ वेरी गुड नंबर। तो अब पाकिस्तान में मुझे नहीं पता कि वहां पे क्या नंबर होंगे या कितनी परसेंटेज जो लोगों की है वो एंटीबॉडीज डेवलप ऑलरेडी हो चुकी है, तो दैट वुड बी वेरी इंटरेस्टिंग टू सी कि वहां का नंबर क्या आता है अगर वो एंटीबॉडी टेस्टिंग शुरू करते हैं। तो कमिंग बैक टू माय पॉइंट कि भाई लॉकडाउन ठीक है, अगर आप नहीं फॉलो कर सकते, आपको बाहर निकलना है काम करना है, तो एटलीस्ट मास्क पहन लें। आज की मैंने एक और स्टडी पढ़ी है ऑस्ट्रेलिया कंट्री के अंदर 90% जो कोरोना वायरस जो है वहां पे वो उन्होंने कंटेन कर लिया है उसको सिर्फ और सिर्फ मास्क पहनने की वजह से।
अच्छा
जी, देखें मतलब उनके 90% रेट जो है ना उन्होंने ड्रॉप किया है कोरोना वायरस की जो फैलने का सिर्फ मास्क पहनने से। और फिर दूसरी इंटरेस्टिंग चीज आप देखें, हांगकांग है, ताइवान है, साउथ कोरिया है, चाइना है, एवरीबडी में वेयर मास्क इन दोस कंट्रीज। तो अगर आप वहां पे ये चार कंट्रीज जो मैंने बताए हैं, हांगकांग हो गया, ताइवान हो गया, साउथ कोरिया, चाइना, ठीक है, इन्होंने इस वायरस को कंटेन बिल्कुल अपने स्ट्रिक्ट मेजर्स से ही किया है। वहां पे हर शख्स इंक्लूडिंग बच्चा जो छोटा सा है 4 साल का 3 साल का वो भी मास्क पहन के बाहर निकलता है। मुझे जो होता है पाकिस्तान का कि ना वो सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो कर रहे हैं और ना ही कोई मास्क पहने निकलते हैं, पूरी पूरी जम्मे गफीर जो है वो ऐसे ही घूम रहे हैं, बाजारों में लाइनें लगी हुई हैं समोसे पकौड़े की दुकानों पे, कोई वहां पे सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो नहीं हो रही। दैट्स माय बिगेस्ट कंसर्न एंड दैट्स माय बिगेस्ट इशू कि अगर आप लॉकडाउन नहीं फॉलो कर सकते, विच आई अंडरस्टैंड कि आपको बाहर निकलना है, काम करना है, दिहाड़ी कमानी है, पैसे कमाने हैं, आपकी जिम्मेदारियां आपके ऊपर, लेकिन इस चेहरे पे मास्क लगाने तो कोई मुश्किल काम नहीं है ना। आप रुमाल बांध लें, आप कोई कपड़ा बांध लें मुंह पे।
एग्जैक्टली इसका मेडिकल एंगल डिस्कस कर लेता हूँ ईरान के रेफरेंस में। उसके 15 सूबों में बताया जा रहा है कि वायरस दोबारा शदीद किस्म की इंटेंसिटी के साथ वो वापस आ रहा है, ये ईरानी वजारत सेहत ने बताया है। सो ये आना जाना, वायरस की कैटेगरीज बदलना,
दोबारा तो वापस इसी सूरत में आएगा कि आपने उसको खत्म किया ही नहीं है सिरे से, तो वो जब एक चीज गई नहीं है तो वो दोबारा नहीं आया, वो इट मींस इट वाज देयर, लेकिन क्या है कि आपने उसको सही तरीके से ना सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो की, ना लॉकडाउन किए आपने, ना ही लोगों ने मास्क पहने। जैसे कि अभी थोड़े दिन पहले खबर मैंने बल्कि अपने फेसबुक के पेज के ऊपर भी शेयर की थी कि ईरान के जो मजहबी रूहानी रहनुमा है उन्होंने कहा था कि 15 मई से दोबारा जो है मस्जिदें खोल दी जाएंगी। तो ये चीजें जो है दिस इज वेरी डेंजरस कि आपने अभी वायरस को मुकम्मल तौर पर खत्म किया नहीं है, लेकिन आप दोबारा से उसको प्रोपगेट करने के रास्ते जो है वो दोबारा खोल रहे हो। तो दिस इज व्हाट द मेन रीजन, दिस कुड बी द मेन रीजन कि वहां पे दोबारा से ही फैलना शुरू हो गया, कि वहां पे जो गवर्नमेंट लेवल के ऊपर भी जो है ना वो इस चीज को सीरियस नहीं लिया जा रहा। दूसरी बात, आपका दूसरा क्वेश्चन जो है कि ये वायरस जो है मुख्तलिफ ममालिक के अंदर इसकी मुख्तलिफ किस्में है, अभी तक इसकी 30 म्यूटेशन जो है वो नजर आई है साइंटिस्ट को। जैसे आपने अभी जैसे फॉर एग्जांपल आपको आपने देखा होगा कैलिफोर्निया और न्यूयॉर्क के अंदर जो है रेट ऑफ नंबर ऑफ डेथ जो है जमीन आसमान का फर्क है, तो वो ये भी कह रहे हैं कि कैलिफोर्निया में जो इसकी म्यूटेशन है वो इतनी ज्यादा खतरनाक नहीं है जितनी कि न्यूयॉर्क के अंदर है। तो दिस इज अ वेरी डेंजरस थिंग।
बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। सो दैट यही वजह है कि बार बार वो बता रहे हैं। अब आ जाइए डॉक्टर साहब, वैक्सीन के बारे में तवक्कुआत बहुत हैं, आप बार बार इस पे कहते हैं, लेकिन हमें बताइएगा कि कौन कौन से मारूफ अमराज हैं जिनके लिए वैक्सीन बनाने की कोशिश की गई लेकिन अब तक नहीं बन सकी है।
देखिए वैक्सीन बनाने का जो प्रोसेस होता है ना दैट कुड टेक इयर्स। अब जैसे बहुत सारे लोग शुरू में बड़े कह रहे थे नहीं नहीं 2-4-6 महीने में वैक्सीन आ जाएगी। देखिए वैक्सीन उसके अंदर स्टेजेस होती हैं क्लिनिकल ट्रायल्स की, स्टेज 1, स्टेज 2 और स्टेज 3। ठीक, अब उसके अंदर शुरू में क्या होता है कि एनिमल्स की सबसे पहले तो उसका एक जेनेटिक कोड होता है वायरस का, उसको डिकोड करना पड़ता है। वो चाइनीज साइंटिस्ट ने उसको डिकोड करके इंटरनेट के ऊपर सबको दे दिया। दैट वाज अ वेरी बिग अचीवमेंट फ्रॉम एंड ह्यूज कॉम्प्लीमेंट टू द चाइनीज साइंटिस्ट कि उसने उसको सबको सबके लिए ओपन कर दिया। अब उसके बाद उसकी जो ट्रायल्स होते हैं वो एनिमल्स के ऊपर होते हैं। जब एनिमल्स पे अच्छा प्रॉब्लम क्या होती है वायरस के अंदर, वो अपनी शेप हर वक्त बदलते रहते हैं। जैसे कि फ्लू वैक्सीन हर साल अमेरिका के अंदर लोगों को लगाई जाती है, लेकिन वो जो पिछले साल का जो स्ट्रेन होता है वायरस का उसको फॉलो करके बनाई जाती है। इसीलिए फ्लू की जो वैक्सीन है वो 100% वो भी इफेक्टिव नहीं है, वो तकरीबन 55-60% इफेक्टिव होती है। बाद लोग जो होते हैं वो फ्लू की वैक्सीन लगवाते हैं लेकिन फिर भी उनको फ्लू हो जाता है। लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि अगर COVID-19 या कोरोना वायरस की हमें सिर्फ 70% जो है इसकी एफिकेसी चाहिए, क्योंकि अगर जहां हमने 70 लोगों को के अंदर ये इम्यूनिटी डेवलप कर दी तो वायरस जो है वो मर जाएगा, वो आगे प्रोपगेट नहीं कर सकेगा, आगे वो नहीं फैल सकेगा, क्योंकि वायरस को एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए होस्ट चाहिए होता है, होस्ट से मुराद उसको एक बंदा चाहिए होता है। लेकिन जब बराबर वाला अगर मुझे वायरस लगा कोरोना वायरस का लेकिन असद के पास ऑलरेडी इम्यूनिटी है तो असद ने उसको ब्लॉक कर दिया, तो यानी कि असद के बाद वो तीसरे आदमी के पास नहीं जाएगा। दिस इज हाउ वी स्टॉप द स्प्रेड ऑफ द वायरस।
ठीक, तो आपने वैसे जिक्र भी किया कि जैसे HIV है, हेपेटाइटिस है, RSV है और इसी तरह और कई एक इश्यूज हैं जिसके लिए बड़ा लंबा अरसा साइंटिस्ट और लैब्स मसरूफ रहे। लेकिन
HIV की वायरस HIV की वैक्सीन 30 इयर्स लगे थे, फ्लू की वैक्सीन को 20-30 साल उसमें भी लगे, हेपेटाइटिस सी की 25 साल लगे, RSV जो बच्चों के अंदर नज़ला होता है फ्लू कह लें उसको 60 साल लगे थे। कॉमन कोल्ड की 99 सीरो टाइप्स हैं। ठीक है, ट्यूबरक्लोसिस यानी कि बीसीजी उसको बनाने में 100 साल लगे. तो दिस वुड बी द फर्स्ट टाइम इन द ह्यूमन हिस्ट्री कह रहे हैं कि किसी भी डिजीज की वैक्सीन जो है वो विद इन अ ईयर और वन एंड हाफ ईयर हम डेवलप करेंगे सारे साइंटिस्ट का.
लेकिन इवन हेपेटाइटिस सी तो नहीं आ सकी अभी तक, सी की नहीं बनी.
तैयारी कर रहे हैं ना वो, लगभग 25 साल हो गए उसको तैयार, मतलब उसको तैयार करने में.
सो यानी अगर कोरोना की वैक्सीन बन जाती है तो ये इंसानी तारीख की तेज तरीन या कम तरीन वक्त में बनाई जाने वाली वैक्सीन होगी.
एब्सोल्युटली.
बहुत शुक्रिया डॉक्टर सोहेल चीमा, आप हमारे साथ थे न्यूयॉर्क से, आपने ज्वाइन किया, आपका बहुत शुक्रिया.
जब रेडियो हो दूर और खबरें हो अहम, तो आइए हमारी वेबसाइट urdu.voa.com पर. जब टीवी सामने ना हो और आपको जानना हो तो और कहीं ना जाइए, urdu.voa.com पर आइए. दिन भर की अहम शह सुर्खियाँ, ताज़ा तरीन खबरें सब मिलते हैं urdu.voa.com पर. अमेरिका और जनूबी एशिया में फैली रेडियो और टीवी के तजुर्बा कार सहाफियों की टीम आपको 24 घंटे बाखबर रखती है. इस पते को याद रखिए, www.urduvoa.com.
ये वॉइस ऑफ अमेरिका है, मैं हूँ असद हसन, और प्रोग्राम के सिलसिले में हम बात करेंगे क्रिकेट पे. आप सोच रहे होंगे कि क्रिकेट में के मैदानों में कुछ नहीं हो रहा तो क्रिकेट का सेगमेंट कैसे. बिल्कुल क्रिकेट के मैदानों में कुछ नहीं हो रहा, लेकिन इटसेल्फ जो है ये बहुत बड़ा बड़े नुकसान का सबब बन रहा है. लेकिन क्रिकेटर्स के यहाँ बहुत कुछ हो रहा है. क्रिकेटर्स जो हैं वो सोशल मीडिया पे मसरूफ़ हैं, और इसके अलावा क्रिकेट के जो बड़े बड़े बाकी क्रिकेट से रिलेटेड इदारे हैं, जैसे क्रिक इन्फो हो गया, बाकी क्रिकेट की वेबसाइट्स हो गई, आजकल वहाँ पे एक बड़ा दिलचस्प ट्रेंड है चला हुआ है कि ऑल टाइम बेस्ट या किसी एक टीम का, ये कभी वर्ल्ड बेस्ट हो रहा है, कभी पाकिस्तान यानी ग्रीन शर्ट्स में बेस्ट हो रहा है, कभी बेस्ट प्लेयर, वो कुछ क्विज की टाइप में चीज़ें सामने आ रही हैं या चॉइसेस में. सो लोग बना रहे हैं, सो लोग उसके ऊपर ही मसरूफ़ हैं. ऑनलाइन क्रिकेट भी हो रही है, क्रिकेटर्स आपस में चिट चैट भी कर रहे हैं जो बहुत वायरल हो रही है. सो बात हम करते हैं कि जब क्रिकेट के मैदानों में कुछ नहीं हो रहा तो उन मैदानों को बराह रास्त आप तक पहुंचाने वाली दो पर्सनालिटीज़, हसन जलील साहब किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, बड़े ज़बरदस्त क्रिकेट कमेंटेटर, और शाह फैसल साहब, दोनों अमरीका में बेस्ड हैं, दोनों क्रिकेट लवर, दोनों क्रिकेट कमेंटेटर. सो उनसे पूछते हैं कि क्रिकेट में क्या हो रहा है. एक चीज़ जो हो रही है आज वॉइस ऑफ अमेरिका की वेबसाइट पे भी आपको मिलेगा, बताया ये गया है कि जो इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड है उसको सिर्फ इस कोरोना की वजह से 380 मिलियन पाउंड का नुकसान उठाना पड़ा है. आपको मालूम है पीएसएल जारी था जब कोरोना की वबा फूटी और पीएसएल नामुकम्मल रह गया. उसके बाद आईपीएल होना था, बहुत बड़ा इवेंट है क्रिकेट का, आईपीएल नहीं हो सका है. सो क्रिकेट बोर्ड्स को, क्रिकेट को कितना नुकसान हुआ है अपने दोनों पैनलिस्ट से पूछने हैं, और वो खुद क्या कर रहे हैं इन दिनों में ये भी जानते हैं. हसन जलील साहब बहुत शुक्रिया आपका, शाह फैसल आपके भी हम मशहूर हैं. तो हसन जलील साहब आप बताइएगा कि क्रिकेट में कुछ नहीं हो रहा लेकिन क्रिकेट के जहनों में क्या हो रहा है.
देखिए बात यह है कि वो वक्त गुजारने के लिए आपको कोई ना कोई तो बहाना चाहिए. अब वो दिन जो पहले मिनटों में बकौल शख्स गुजर जाता था, सुबह होती थी और शाम होती थी, अब ये आलम है कि वो पुराना दौर वापस आ गया है कि काटे नहीं कटता.
बिल्कुल.
तो जाहिर है उसके लिए नई टेक्नोलॉजी है, उसने बहुत सहारा दिया है. और जिस तरह आपने बड़ा अच्छा इंट्रो दिया कि लोगों ने मसरूफियात के तरह तरह के तरीके ढूंढ लिए हैं, और आप देखिए एक ट्रेंड जो नया चला है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है कि यूट्यूब पे भरमार है चैनल्स की.
बिल्कुल.
मेरा ख्याल है शायद ही कोई ऐसा नोन फिगर हो जो अपना चैनल लेकर यूट्यूब पे न चला रहा हो.
बिल्कुल.
लोग उसको देखते हैं और हर चैनल आप देख रहे होंगे कि वो थाउजेंड्स में उसकी क्लिक्स आ रही हैं.
ऑफ कोर्स.
इसके अलावा फिर जाहिर है कि जैसे आपने बताया कि क्रिकेटर्स ने अपनी मसरूफियात ढूंढ ली हैं और हम जैसे लोग हैं वो अपनी मसरूफियात में लग गए हैं.
तो फिर आपकी मसरूफियात में चैनल लॉन्च करना नहीं है या यूट्यूब पे या बाकी सोशल मीडिया के ऊपर अपने आपके एक बड़ी फैन फॉलोइंग है उनके सामने आने का क्या प्लान है.
प्रोग्राम तो है आपस की बात है, लेकिन बात यह है मेरा
अब ये बात आपस की नहीं रही, बहुत सारे लोगों ने सुन ली है.
मेरा हमेशा से एक वो रहा है कि काम आप वो करें जिसकी अप्रिसिएशन हो और जो थोड़ा सा डिफरेंट हो दूसरों से.
सही.
मैंने इसीलिए बड़ी, मुझे मतलब ये कि अपने मुंह से कहना नहीं चाहिए कि बड़ी फरमाइशें आती हैं फेसबुक पर भी, वैसे मुझे ईमेल्स भी आती हैं और मुख्तलिफ जरिए से लोग मुझे कहते हैं आप कुछ करें. मैं प्लान कर रहा हूँ लेकिन इंशाल्लाह एक तो क्रिकेट की मैं इंशाल्लाह प्रोग्राम शुरू कर रहा हूँ, लेकिन वो बड़ा डिफरेंट होगा इन तमाम प्रोग्रामों से जो चल रहे हैं. वेरी इंफॉर्मेटिव, वेरी ऑथेंटिक और एक्सक्लूसिव.
सही।
उसके बाद मैं अपनी दो किताबों की तैयारी कर रहा हूँ। एक किताब मेरी क्रिकेट पर है जो बड़े अच्छे से पेंडिंग चली आ रही है, जो उसका टाइटल है कॉमेंट्री बॉक्स। और एक किताब मेरी वो है जिसमें मेरे टोटल जो मेरी जिंदगी है उसका अहाता किया गया है, जिसमें मेरे तमाम प्रोफेशनल इंगेजमेंट्स हैं, टेलीविजन, रेडियो, लोक शख्सियात और बहुत सी।
सही।
तो ये मौके से फायदा उठाकर मैं ये काम आजकल कर रहा हूँ।
अच्छा, ये तो जबरदस्त हो गया, चैनल लॉन्च और बुक्स की तैयारी। शाह फैसल, आप बताइए आपकी मसरूफियात कैसी जा रही हैं? आप तो IPL की कमेंट्री के लिए वहाँ पे मौजूद थे।
जी, PSL की कमेंट्री के लिए, हाँ जी। और अधूरे में छोड़कर आना पड़ा क्योंकि वो बगैर क्राउड के मैच होने लगे और फिर बिल्कुल कैंसिल ही हो गई। जो मेला सजा हुआ था, मतलब मैंने तो फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस किया, मैं आपको बता नहीं सकता, मेरी बिदा है बगैर आपसे बात भी होती रही थी कि कुछ लोगों ने तो यहाँ तक कहा, और हसन भाई जो है वो तारीख पर उनकी गहरी नजर है, कुछ लोगों ने ये तक कहा कि ये पाकिस्तान में खेलों की तारीख का जो क्राउड अटेंडेंस के हिसाब से सबसे बड़ा इवेंट था, इसने सरपास किया वर्ल्ड कप 1987 और 1996 को, अ सिंगल स्पोर्टिंग इवेंट विद दैट मच पार्टिसिपेशन ऑफ क्राउड। एनीवे, खैर वो तो कोरोना की वजह से जाता रहा। बाकी हमारी भी मसरूफियात आजकल यही है कि सोशल मीडिया को फॉलो कर रहे हैं, और जैसा आपने कहा कि चैनल्स हैं, कंटेंट की भरमार है।
मजेदार चीजें लग रही हैं। ये बताएं कि इवन क्रिकेटर्स जो हैं वो बना रहे हैं कि बेस्ट 11, वर्ल्ड 11, हिस्टोरिक 11 और इवन अपने अपने मुल्कों की बेस्ट 11। सो ये ऐसी चीजें लग रही
है। इत्तेफाक से आज सुबह ही मैंने एक देखी, हमारे पाकिस्तान के बड़े ही मशहूर, दुनिया के मशहूर स्टैटिस्टिशियन है मजहर अरशद, जो दुनिया की तमाम टॉप ब्रॉडकास्ट कंपनियों के साथ काम करते हैं। आज मैंने उनकी एक ट्वीट देखी, तो उन्होंने ऑल टाइम प्री पार्टीशन और पोस्ट पार्टीशन जो भी उनकी नॉलेज में थी, एक पंजाबी 11 भी बना दी।
अच्छा।
तो मैंने शायद मेरे ध्यान में था कि ये सब 11 अब बन चुकी हैं, शायद कोई रहती हो, लेकिन मजर बीइंग मजर उन्होंने वो भी 11 बना दी और इसको किसी ने फॉलो किया। फिर
तो शाह फैसल, ये बताएं कि फाइनेंशियली क्रिकेट जो है ऑफ कोर्स उसके अंदर पैसा बहुत इन्वॉल्व है। अभी तो हमें सिर्फ ये ECB का पता चला है ना कि 380 मिलियन पाउंड का लॉस हो गया है। सो क्रिकेट को, ICC को रेवेन्यू के एतबार से क्या कुछ लॉस हुआ है?
जी, बहुत बड़ा लॉस हो रहा है और होगा अगर जितने देर क्रिकेट नहीं होगी। जो ECB की फिगर आपने कोट की, अगर ये पूरा सीजन वाइप आउट होता है तो 380 मिलियन पाउंड का है, और IPL के इससे भी ज्यादा स्ट्रगलिंग, क्योंकि IPL आपको पता है चंद हफ्तों का इवेंट होता है, लेकिन तकरीबन 500 मिलियन डॉलर के लगभग उसका नुकसान है अगर वो IPL नहीं होती, जिसमें स्पॉन्सर्स को नुकसान होगा, ब्रॉडकास्टर्स को होगा, BCCI को होगा, और अल्टीमेटली वही नुकसान जो है वो ICC को होगा, क्योंकि BCCI और ये जो बोर्ड्स हैं यही ICC को फंड करते हैं, जैसे ECB होगी, BCCI होगी। तो अगर ये IPL जैसा इवेंट है वो अगर नहीं होगा तो ऑलमोस्ट $500 मिलियन का नुकसान है, और इसके अलावा जो इंडियन इकोनॉमी पे भी IPL का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन हुआ करता है, वो भी जो है वो नुकसान होगा। तो उसका नुकसान नीचे तक महसूस किया जाएगा, जैसे मैं आपको बताता चलूं कि अगर इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड की थोड़ी मेरी वाबस्ती रही है तो मुझे ये पता है कि जो काउंटीज को फंडिंग होती है, और काउंटीज के नीचे ईच एंड एवरी जो क्लब है, जो इनका बेसिक जहां से स्ट्रक्चर खड़ा होता है, उसको फंडिंग होती है ECB से हर साल। तो अगर ये लॉस ECB को होगा तो ये नीचे तक जाएगा वो क्लब्स में। क्लब्स की आपको मैं मिसाल दूं कि छोटी छोटी मेंटेनेंस होती है, जिस तरह साइड स्क्रीन की रिपेयर हो गई या स्कोर बोर्ड की रिपेयर हो गई या और बाउंड्री फेंस की रिपेयर्स हो गई, तो यानी इसका नुकसान टॉप से लेके बिल्कुल बॉटम तक जाएगा और कोई भी उसको महसूस किए बगैर रह नहीं सकेगा क्रिकेटिंग
कम्युनिटी में। हसन जलील साहब, आपके ख्याल में ये जो फाइनेंशियल लॉसेज हैं ICC के या क्रिकेट बोर्ड्स के, ये क्रिकेट को कैसे मुतासर करेंगे?
बहुत ज्यादा करेंगे। जिस तरह देखिए जी, अहम तासुर ये है कि जो मुल्क दुनिया भर की जो मुआशी सूरत हाल है वो आइंदा आने वाले बरसों में इसके झटके महसूस करेगी। इसी तरह क्रिकेट जो है वो इट विल नॉट बी द सेम, जो अब कोरोना के बाद में कहा जाता है ना कि लाइफ आफ्टर कोरोना, लाइफ इज नॉट गोइंग टू बी द सेम। वो इसलिए है कि देखिए, इकोनॉमी जो है वो रिकवर करते हुए टाइम लगाएगी, आपका स्पॉन्सरशिप आपकी इफेक्ट होगी, ठीक है जी, आपके जो पेट्रोनेज है वो इफेक्टिव होगी, और जिस तरह फैसल ने कहा कि क्रिकेट बोर्ड जो है उनके माली वसाइल वैसे नहीं होंगे जैसे अब तक होते आए हैं, तो जाहिर है कि बहुत बड़ा नुकसान है। और चूंकि ये एक ऐसा मतलब ये सिलसिला चला है कि जिसने पहली मरतबा दुनिया की हिस्ट्री में पूरी दुनिया को जामित कर लिया है। आप देखिए 204 मुल्क जो है वहां पर आप ना कोई आप एक दूसरे के मुल्क में जा सकते हैं, ना ट्रेड कर सकते हैं, ना कम्युनिकेशन कोई ऐसी है बिजनेस की, हर चीज जो है एक स्टैंड स्टिल हो गई है। तो इसके इफेक्ट्स बाद में जो है वो ज्यादा शदीद होंगे।
इवन क्रिकेटर्स के स्किल्स के ऊपर भी असर अंदाज होंगे। जाहिर है अगर कोई क्रिकेटर गेम से ही दूर है, और गेम से दूरी की वजह तो बताई जा रही है कि चूंकि बॉल है और बॉल सारे प्लेयर टच करते हैं, वैसे तो ग्राउंड्स को खाली रख के भी क्रिकेट हो सकती है, सो जो क्रिकेटर्स खेल ही नहीं रहे सो उनको भी फर्क पड़ेगा।
देखिए इसमें जो सबसे ज्यादा जो मैं समझता हूँ इफेक्ट होने का इम्कान है वो साइकोलॉजिकली जो है ना नफ्सियाती तौर पे असरात, जैसे आप देखिए कि मुख्तलिफ तबकों के एनालिसिस आने लगी है कि उससे लोग मुतासर होना शुरू हो गए हैं। ये जो अब जाहिर है कि आपको एक तरीके से आप बिल्कुल लॉक्ड हैं, तो उसके नफ्सियाती असरात जाहिर है आप पे रूनुमा हो रहे हैं। फिर वो खिलाड़ी जो जाहिर है कि जो एक्सपोजर हर वक्त चाहते थे और जिनका प्लेजर ही है कि वो एक्सपोजर जो है उसको एंजॉय करें, अब वो कैद होकर रह गए हैं। और जाहिर है जब वो आजाद होंगे उसके बाद भी कुछ अरसे तक क्रिकेट की सरगर्मियां उस अंदाज से बहाल नहीं हो पाएंगी जैसे पहले होती थी, तो जाहिर है उसके नफ्सियाती असरात ज्यादा होंगे बनिस्बत टेक्निक के, मैं समझता हूँ।
हाँ, एक तो ये टेक्निकल नफ्सियाती असरात, दूसरा मेरे जहन में ऐसे ही जब हसन जलील साहब बात कर रहे थे कि क्या नेट भी नहीं हो सकता, यानी एक बॉलर्स को अगर 6 गेंदें डेजिग्नेट कर दें कि वो वही यूज़ करेगा, तो नेट लगा हुआ है, एक बॉलर है वो 6 बॉलें एक बैट्समैन को करा रहा है, फिर वो बॉलें वो उठा के दूसरे बैट्समैन को कराने लग जाता है, इसी तरह बॉलर वो चेंज होते रहते हैं, शिफ्ट होते रहते हैं, सो नेट प्रैक्टिस तो हो सकती हैं, क्या ख्याल है?
ये आइडिया तो है, जिस तरह अभी हसन भाई बात कर रहे थे, जब घरों में मुकैद हैं तो ये चीजें जरूर जहन में आती हैं कि ये भी किया जा सकता है, इस तरह भी हो सकता है, लेकिन जैसा कि बात पहले भी हुई कि किसी के वहमो गुमान में भी नहीं था ये सिनेरियो होने का, इसलिए किसी ने इस बारे में सोचा ही नहीं और कोई प्रिपेयर्ड नहीं था। अब आहिस्ता आहिस्ता वो नफ्सियाती हद आ रही है, जब हर बंदा जो है वो घर में बैठे हुए अब बहुत ज्यादा उकताने लग गए हैं सब लोग, और उसके बाद फिर ऐसी जैसे आपने सजेशन की, यकीनन लोग इस पे काम कर रहे हैं, क्योंकि इससे पहले जो स्टेज थी आपने देखा होगा कि प्लेयर्स ने अपनी फिटनेस और ट्रेनिंग की वीडियोस अपलोड की, कोई अपने ड्राइंग रूम में जो है वो वेट उठा के कर रहा है, कोई अपने छोटे से लॉन में, कोई पोर्च में, कुछ ना कुछ, तो अब जाहिर है वो भी हो गया सब कुछ। अब नेक्स्ट यही है कि हर कोई चाहेगा कि किसी तरह ये जो फिजिकल बैटिंग और बॉलिंग करे, और नेक्स्ट के लिए वो सोचेंगे, तो जैसा हसन भाई ने कहा कि लाइफ विल नेवर बी द सेम इन एवरी एस्पेक्ट, सो क्रिकेट इज नॉट डिफरेंट, तो यकीनन इस बारे में सोचा जा रहा होगा। और खासतौर पर मैं इंग्लैंड की बात इसलिए करता हूँ कि उनका सीजन था, पाकिस्तान जैसे मुल्क में सीजन ऑलमोस्ट ओवर था, 2-3 गेम्स का नुकसान हुआ, बाकी तो सितंबर तक कोई क्रिकेटिंग एक्टिविटी जो है वो प्लान नहीं है डोमेस्टिक क्रिकेट, तो वहां के क्रिकेटर्स जो है वो इस वक्त मैं अक्सर देखता हूँ स्टुअर्ट ब्रॉड, जेम्स एंडरसन, जो रूट वगैरह, वो लोग बहुत ही एक तरह से फ्रस्ट्रेटेड लग रहे हैं, क्योंकि उनका सीजन उरूज पे है और कोई क्रिकेट की कोई जो है वो कोई आइडिया आया ताकि वो बाहर निकले मैदानों में और जो चीज जो उनका प्रोफेशन है वो उस पर काम करें।
हसन जलील साहब,
जो मैं समझता हूँ कि और कुछ हो ना हो, एक फॉर्मेट क्रिकेट का इससे बहुत मुतासर होगा, वो है टेस्ट क्रिकेट।
अच्छा ये बताएं हसन भाई, अगर हम पीसीबी की बात करें, वैसे तो मैंने शुरू में हवाला क्रिकेट फो का भी दिया, सब अपनी यादों पे चल रहे हैं कि आज के दिन कौन सा बड़ा इवेंट था, पाकिस्तान ने 25 मार्च को या फलां को वर्ल्ड कप जीता, फिर उस दिन हिस्ट्री, वो सारी वो स्टोरीज बन रही हैं। आपके जहन में भी ऑफकोर्स ऐसी बहुत सारी यादें होंगी जो आप उनका हवाला अपने चैनल्स में देंगे जैसे आप ये कह रहे हैं, लेकिन एक चीज़ जो बड़ी पॉपुलर हुई ना वो पीसीबी ने, यानी पाकिस्तान की तारीख के यानी टॉप बैट्समैन, और बताया कि इनमें से पेयर बताएं कि जिन्होंने बेस्ट परफॉर्मर रहे हों, और इसी तरह बॉलर बॉलिंग के अंदर की बेहतरीन जोड़ी, मेजॉरिटी का ख्याल वसीम वकार पे था कि एज पेयर उनसे बेहतर कोई नहीं आया पाकिस्तान की हिस्ट्री में। आपके ख्याल में बॉलिंग का पेयर कौन सा बेहतर रहा और बैटिंग में कौन सा पेयर बेहतर रहा? मैं पूरी टीम इसलिए नहीं पूछ रहा कि थोड़ा सा उसमें आपको थॉट प्रोसेस इन्वॉल्व करना होता है, लेकिन पेयर
देखिए जहां तक बॉलिंग है उसमें तो विदाउट एनी डाउट, आप अगर पाकिस्तान की पूरी क्रिकेट हिस्ट्री उठा के देख लें तो वसीम और वकार से ज्यादा बेहतर प्लेयर आपको नहीं मिला। पैचेस में आए प्लेयर लेकिन कंसिस्टेंटली इतने ज्यादा मैचेस एक साथ खेलने वाला प्लेयर जो है वो आपको नहीं मिलेगा।
बिल्कुल।
अच्छा बैटिंग में आपके कई अच्छे प्लेयर आए लेकिन उनमें मैं समझता हूँ कि मोहम्मद यूसुफ और मुझसे अगर कहा जाए तो मैं यूनुस का नाम लूंगा, और उसके बाद दूसरा प्लेयर जो बनता है वो आपका मोहम्मद यूसुफ और इंजमाम है।
बिल्कुल।
यहाँ भी वही वाली बात है कि स्टेटिस्टिकली ज्यादा मैं बात कर रहा हूँ ज्यादा मैचेस खेलने वाले खास मैचेस खेलने वाले प्लेयर की बात।
मैंने ऐसे पहले कि मैं फैसल से भी पूछूं, मैंने भी बिल्कुल बॉलिंग में अनडाउटफुली अनकंटेस्टेंटली मैं कहूंगा कि वो वकार और वसीम का पेयर था, और बैटिंग में मेरे नज़दीक इंजमामुल हक और मोहम्मद यूसुफ जिसमें क्लास भी था, अगरचे यूनुस बहुत बड़े परफॉर्मर हैं कोई शुबा नहीं है। फैसल आपके ख्याल में?
जी असद भाई, अब इसमें जो कॉन्सेप्ट अक्सर जगह पे बेस्ट इलेवंस का ये बनाया गया, ये जो पेयर्स थे कि आप चूज करें कि पाकिस्तान की जरूरी नहीं कि वो एक ही दौर में खेले हों, मुख्तलिफ अदवार में से आप किन दो को एज अ पेयर खेलता हुआ देखना चाहेंगे, एक ये एस्पेक्ट भी इसमें आया। तो मेरा तो हमेशा से जो फैसिनेशन रही है वो हमेशा जावेद मियांदाद और ज़हीर अब्बास की रही है कि इनका जो बैटिंग पेयर था वो दोनों मुख्तलिफ स्टाइल के बैट्समैन थे और दोनों जब खेलते थे तो बॉलरों का जीना हराम किया कर देते थे। जावेद मियांदाद की आपको पता है कि वो रनिंग बिटवीन द विकेट्स और ज़हीर का स्ट्रोक प्ले, फिर दोनों स्पिनर्स के अगेंस्ट मास्टर थे और जावेद मियांदाद चैलेंज लेके खेलते थे, ज़हीर उनकी बनिस्बत जो है क्वाइटली अपने स्टाइल और एलिगेंस ग्रेस के साथ अपने रन बनाया करते थे। तो मेरा तो बैटिंग में पेयर बेस्ट यही है, और अगर ख्याली घोड़े दौड़ाए जाए तो बॉलिंग में मेरे ख्याल में वसीम अकरम और मोहम्मद आसिफ का नए बॉल से जो पेयर अगर होता वो क्या ही पेयर होता, जो दोनों नए बॉल से जो आर्टिस्ट हैं बॉलिंग के, और दे कैन मेक द बॉल टॉक यू नो इन लिटरली, इतना उनके पास फन था और जो कंट्रोल था, अगर दोनों इकट्ठे ऐसे पेयर होते तो कोई भी क्या नजारा दीपनी होता। और अगर बात करें कि किसी उस हद तक जाए अगर कि अगर उनके बाद फॉलो अप में आपके पास वकार और शुएब अख्तर आ जाए
बहुत शुक्रिया शाह फैसल, आप हमारे साथ थे। हसन जलील साहब आपका भी बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया,
बहुत शुक्रिया जी, ऑलवेज अ प्लेजर,
थैंक यू।
ताज़ा तरीन खबरों, खुसूसी फीचर्स, टीवी और रेडियो प्रोग्राम देखने और सुनने के लिए विजिट कीजिए www.voanews.com/urdu।
ये वॉइस ऑफ अमेरिका है, मैं हूँ असद हसन, और हमारे प्रोग्राम का ये आखिरी सेगमेंट वबा में कला। जैसा कि आप जानते हैं कि इस सेगमेंट के अंदर हम अपने शुरा को उन शुरा को मदू करते हैं जिन्होंने बिलखसूस कोरोना की वबा के दिनों में हालात से मुतासर होकर इसे अपनी शायरी के इजहार में बयान किया है और तख्लीक की है। सो आज हमारे साथ न्यूयॉर्क से हमारे दोस्त अवैस राजा साहब मौजूद हैं, बहुत शानदार लिखते हैं उर्दू और पंजाबी दोनों ज़बानों में। सो अवैस राजा साहब बहुत शुक्रिया आपका, बताइएगा पहले तो जनरली कोरोना वायरस ने कैसे आपकी ज़िंदगी को मुतासर किया है, और ख़ासतौर पर जब आप न्यूयॉर्क में हैं तो आप तो सबसे ज़्यादा ऐसे शहर में बैठे हैं जहाँ पे लोग मुतासर हुए हैं, जहाँ पे हम बात हुई हैं, तो आपका मुशाहिदा और आपका तो वो ज़्यादा गहरा और तकलीफ दे होगा।
जी अस्सलामु अलैकुम असद भाई, बहुत शुक्रिया आपने मुझे लाइन पे लिया। तो एक तो भाई ये जो न्यूयॉर्क आपको पता है यहाँ की जो गहमा गहमी है, तो इस जिंदगी में जब आप बाहर निकलते हैं तो बिल्कुल हू का आलम है, और वो शहर के जिसके बारे में मशहूर है कि ये सोता ही नहीं है, तो एक अजीब सा माहौल है, कभी कभी खौफ वहशत तारी हो जाती है आपके ऊपर, लेकिन उसके बावजूद भी जिंदगी है, चल रही है, और एहतियात के साथ हमने इसको आगे बढ़ाना है। तो हम भी आपकी तरह, जैसे पूरी दुनिया इस वक्त लॉकडाउन का शिकार है, हम भी वैसे ही हैं। तो हमारी सूरत हाल थोड़ी सी डिफरेंट है दूसरे मुल्कों से कह लें, शहरों से कह लें, स्टेट से कह लें, कि यहाँ जो इसके फैलाव है वो बहुत तेज है,
कोई शक नहीं है,
और उसकी वजह से हमारी پاکستانی کمیونٹی بھی اور باقی ساری کمیونٹیز بھی بہت زیادہ متاثر ہوئی ہیں, اور ہمارے اردو ادب کے ساتھ ریلیٹڈ بھی کئی جن کا بہت زیادہ دکھ ہوا.
آپ ان کا نام لے سکتے ہیں, کیونکہ پاکستان میں اویس انفارچونیٹلی ابھی بھی کچھ دیر پہلے ایک بچے سے, بچوں کو سمجھانا بالخصوص ضروری ہے, یعنی نوجوانوں کو, کہ وہ کانسپریسی تھیوریز پہ یقین نہ کریں. ابھی بھی لوگ سوال کرتے ہیں کہ کرونا ہے یا نہیں, یہ جینون ہے یا نہیں. تو آپ ہمیں بتائیے گا کہ اہل ادب کمیونٹی میں سے اور باقی بزنس کمیونٹی میں سے, آپ کے جان پہچان والے لوگوں میں سے کتنے لوگ اس سے متاثر ہوئے یا اس کے شکار ہوئے ہیں؟
یہ سب بھائی, یہاں تو بہت زیادہ ہماری جو پاکستانی کمیونٹی ہے, ہمارے بہت قریبی دوست ہے اشرف میاں صاحب جو اردو ادب الکار باب ذوق کے بانیوں میں نیو یارک میں شمار کیا جاتا ہے, ان کی ڈیتھ ہوئی ہے پچھلے دنوں میں. اور بہت قریبی دوست ہمارے جو اردو ادب کے ساتھ بھی ریلیٹڈ تھے, ہمارے بہت قریبی دوستوں میں بھی تھے, تو وہ ہمیں دعوے مفارکت دے گئے ہیں. تو یہ بات یہی ہے کہ اب ہم لوگ سوچتے تو رہتے ہیں, اب وہی جو اس کا شکار ہوا ہے, ہمارے میرے بہت پیارے دوست ہیں اعجاز حسین بٹی صاحب, اردو اور پنجابی کے شاعر ہیں بہت اچھے, وہ تو اس میں مبتلا بھی ہو گئے تھے, لیکن شکر الحمدللہ کہ وہ اب اس سے.
اچھا, بٹی صاحب کو کرونا ہو گیا تھا, چلو ہماری بھی بہت ساری دعائیں ان کے لیے, بہت شاندار شاعر ہیں, بہت خوبصورت لکھتے ہیں وہ بھی. اویس راجہ صاحب, آپ کی شاعری کی طرف آتے ہیں اور خاص طور پہ جو کرونا سے متاثرہ آپ کا کلام ہے, میں چاہوں گا کہ آپ ہمارے سامعین تک پہنچائیں, یعنی اس سے انسپریشن لے کے. آپ تو خاص طور پہ جہاں سے آپ نے ذکر بھی کیا کہ کتنا خوبصورت شہر, اتنا کہنا چاہیے کہ منی ورلڈ ہے, پوری دنیا کے لوگ وہاں پہ ہیں, خوبصورتی ہے, روشنیاں ہیں, رومانس ہے, کیا ایسا کچھ ہے جو وہاں پہ نہیں ہے, لیکن سب سٹینڈ سٹل جیسے وقت تھم گیا ہو. سو یہ سب کچھ آپ کی شاعری میں کیسے ریفلیکٹ ہوا ہے؟
جی, میں شروع دنوں میں جب یہ, کیونکہ اب تو ایک ہوتا ہے نا, بندے کو عادت سی ہو جاتی ہے, اب تو ہم اس چیز کے عادی ہو گئے ہیں, لیکن جب شروع میں وہ لاک ڈاؤن کا سلسلہ شروع ہوا اور شہر کی جو ویرانی تھی جب وہ دیکھی, تو وہ بہت کاٹ کھانے کو دوڑتی تھی. تو اس دوران میں نے ابتدائی دنوں میں ہی ایک غزل لکھی تھی, تو وہ میں پیش کیے دیتا ہوں. اور یہ غزل میں نے مقصد بھائی ہیں, مقصد ندیم صاحب ہمارے یہاں اردو ادب کے بہت بڑا نام ہے, تو ان کے نام میں نے کی تھی, تو ان کا نام بھی اس غزل میں آتا ہے, اس وجہ سے تھوڑی سی وضاحت ضروری
ہے.
بلا بن کر کرونا آدمی کو, بلا بن کر کرونا آدمی کو بنا لے گا کھلونا آدمی.
واہ,
یہاں اب خود کو چھونے کے لیے بھی پڑیں گے ہاتھ دھونا آدمی.
واہ واہ, بہت اعلیٰ.
سفر میں آج تک رکھے ہوئے ہے تیرا ہونا نہ ہونا آدمی.
کیا کہنے, تیرا ہونا نہ ہونا آدمی کو. واہ,
بڑے حد سے کبھی گر خواب غفلت جگا دیتا ہے سونا آدمی.
واہ واہ واہ, کیا کہہ رہے ہیں آپ کے.
پڑے گا لازمن اس بار مقصد, پڑے گا لازمن اس بار مقصد, ہنسی کے ساتھ رونا آدمی کو.
واہ,
خوشامد سے فقط گرتا ہے لیکن, خوشامد سے فقط گرتا ہے لیکن, حسد کرتا ہے بونا آدمی کو.
واہ 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 واہ, کیا کہنے, کیا کہنے آپ کے ویس راجہ.
خوشامد سے فقط گرتا ہے لیکن, حسد کرتا ہے بونا آدمی کو, کئی حجروں کی یہ خواہش ہے راجا, کئی حجروں کی یہ خواہش ہے راجا, بنا دیں چار کونا آدمی کو.
واہ 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 واہ, کیا کہنے ہیں ویس راجہ.
بلا بن کر کرونا آدمی کو, بنا لے گا کھلونا آدمی کو.
بہت اعلیٰ, بہت زبردست, بہت خوبصورت غزل آپ کی. اویس راجہ ہمارے ساتھ تھے نیو یارک سے, انہوں نے نیو یارک کا باقی احوال بھی بتایا, انہوں نے ان روشنیوں کو کہنا چاہیے کہ ویران ہوتے ہوئے دیکھا ہے, زندگیوں کو ٹھہرتے ہوئے دیکھا ہے, وقت کو تھمتے ہوئے دیکھا ہے, پیاروں کو انفارچونیٹلی جاتے ہوئے دیکھا ہے. سو ان کی شاعری میں اور ان کی گفتگو.
جنوبی ایشیائی امور کے ماہر امریکی دانشور, محقق اور استاد ڈاکٹر اسٹیفن کوہن اتوار کے روز انتقال کر گئے. وہ پاکستان اور بھارت کے سیکیورٹی امور پر دسترس رکھتے تھے اور جنوبی ایشیائی امور کے بارے میں ایک درجن سے زائد کتابوں کے مصنف تھے۔ سٹیفن کوہن کے بارے میں وائس آف امریکہ کے شبیر جیلانی نے واشنگٹن کے معروف تھنک ٹینک اٹلانٹک کون